और जो आज का मौजू का आपने इंतखाब किया है वो एक तरह से माहिर रमज़ान के हवाले से मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा इंतखाब किया है कि नौजवानों और बच्चों में बच्चों को तरगीब दिलाना इबादत की, इबादत की तरगीब
बिल्कुल
दिलाना इस ज़माने में बड़ा मुश्किल हो जाता है नौजवानों के लिए। बच्चों को तो फिर भी आप किसी भी तरह लेती हैं, नौजवानों को समझाना और उनको अपनी बात समझाना ये बड़ा मुश्किल होता है। इस हवाले से आप जो कहना चाहती हैं वो हम हाजिर हैं।
बहुत शुक्रिया। मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ और रोज़ों की मकबूलियत की दुआ करती हूँ अपने नाज़रीन के लिए, और उम्मीद है कि प्रोग्राम में मैं वो चीज़ें बता सकूँ जो आपके लिए मुफीद साबित हों, तमाम माओं के लिए, तमाम वालदैन के लिए, अपने बच्चों के सिलसिले में। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करना था कि जैसे आपने कहा कि बहुत अहम मसला है, और आज के दौर में जब बाहरी तफरीहें और ये सब इतनी ज़्यादा हैं उसमें नौजवानों को रोकना या वो उन पर सख्ती करना ये मुमकिन नहीं है। तो इस सिलसिले में देखिए, ये काम एक दिन में तरगीब इबादत की किसी को भी नहीं दिलाई जा सकती। एक दिन में या थोड़ी सी लालच के ज़रिए तुम्हें ये दिला देंगे तुम नमाज़ पढ़ लो, तो फिर वो नमाज़ वो बस उसी दिलाने तक ही, कोई अपने खिलौना या जो भी चीज़ कही है उसकी फरमाइश बच्चे की पूरी करने की, तो बस उसी फरमाइश के पूरे होने तक ही वो इबादत रहेगी नमाज वग़ैरह। होता ही है कि इस सिलसिले में हमारा जो फ़र्ज़ है और हम जो काम अपना शुरू करें वो बच्चे की जब बिल्कुल गोद में हो, जब बच्चा पैदा हुआ हुआ उस ज़माने से, और हम ये ना सोचें कि ये क्या समझता है बच्चा जो है वो। मैं बहुत चीज़ों में ये मिसाल देती हूँ कि बिल्कुल एक स्पंज की तरह होता है, खाली स्पंज, आप खुश्क स्पंज लें, उसे आप पानी में रख दें, उसे शरबत में रख दें, उसे तेल में रख दें, जिस चीज़ में आप उसे रखेंगे वो उसे जज्ब कर लेगा। तो वो जज्ब करने वाली स्टेज होती है बच्चे की, यानी जब वो बहुत छोटा होता है। आप समझ रहे होते हैं वो कुछ नहीं समझ रहा है, वो तो अभी तो जाग रहा था, अभी तो सो गया, लेकिन ये नहीं है। वो चीज़ें महसूस कर रहा होता है, उस जहन पूरी तरह काम उसका कर रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, जिस दुनिया से मैं आया हूँ और जिस दुनिया में मैं अब पहुँचा हूँ इसमें तो बहुत फ़र्क है, तो ये हो क्या रहा है। तो वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ख़ुद उसके लिए नमूने अमल बनना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, यानी घर वालों को, खुसूसन वालदेन को, कि नमाज की पाबंदी आपने की, ठीक है। अब वो बच्चे को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो आप हाँ आम हालात में नहीं करते, तो वो उसको गौर से देखेगा आपके दूसरे कामों की तरह। जैसे आप और अगर खाना पका रही हैं या दूसरे काम कर रही हैं तो बच्चा महसूस करता है कि माँ कुछ कर रही है, उसी तरह वो ये देखेगा कि ये फ़र्क है, ये कुछ हो रहा है। तो आपको नमाज रोज़े का ख्याल रखना होगा, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना होगा, उस वक्त जो आपका अपना लिबास और जो अंदाज होगा उसका बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि बच्चा सारी चीज़ें देख रहा है। अगर आपने नमाज के लिए, वो जो नमाज के लिए है कि नमाज आप बरपा करें, जो तर्जुमा है अकामत का वो है बरपा। बरपा करने का मतलब पढ़ो नहीं, कुरान में कहीं नहीं आया है, अकामा करना आया है। अकामे का मतलब होता है उसका पूरा एहतमाम और उसको पूरी तरह से, यानी बरपा करना, जिसे उर्दू में हम कह सकते हैं कि आपने, मतलब अगर आपके कपड़े साफ नहीं है तो आप कपड़े बदलें, अगर अच्छे कपड़े नहीं कोशिश करें कि बेहतर कपड़े पहने, ठीक है ना। हत्ता इसमें तो नमाज के लिए है कि आप कोई जेवर पहन लें, खवातीन के लिए है कि सोने का नहीं है तो चांदी का, और चांदी का नहीं है तो हत्ता ये कि चमड़े की कोई चीज़ आप पहन लें, अच्छा। जेवर की शक्ल में अपनी तज़ीन के लिए। उसके बाद सभी को पता है कि सुरमा है या काजल और यानी खुशबू, तो ये सारी चीज़ों का जब आप एहतमाम करती हैं, जब आप सज्जादा बिछाती हैं, जब आप ये, तो बच्चा महसूस कर रहा होता है कि आम हालात से फ़र्क है। तो एक तो आपको इसका ख्याल रखना होगा, दूसरी चीज़ यह कि रोज़ा है, तीसरी चीज़ यह है कि मज़हबी महफिलें, उनमें बच्चे को अपने साथ ले जाएं।
बिल्कुल,
बच्चे को अपने साथ जब आप ले जाएंगी तो वो उस फ़र्क को महसूस करेगा। मसलन आपने मुहर्रम में स्याह कपड़े आप ज़्यादातर पहन रही हैं, ठीक है ना, तो आम दिनों में तो आप नहीं पहन रही, तो बच्चा ये चीज़ ज़रूर महसूस करेगा कि ये कोई चीज़ फ़र्क है आम दिनों से, ये चीज़ यहाँ पर फ़र्क है। वैसे ही नमाज के सिलसिले में, और जब बच्चा भी बिल्कुल छोटा है, वो आपको अब थोड़ा सा चलने फिरने लगा, तो अब होता ही है कि आप नमाज पढ़ेंगी या उसका, मतलब बाप उसका नमाज पढ़ेगा या बुजुर्ग पढ़, तो बच्चा खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। उसके बाद वो अभी वो शायद वो लेट जाए सजदे में, शायद वो रुकू में वो आपको पलट पलट के देखता रहे, लेकिन ये मत सोचे कि ये खेल है और उसको हटा दो, हमारी नमाज में डिस्टर्बेंस कर रहा है, ये नहीं करें। نہ ڈانٹیں اس کو. اگر اس نے مان لیجئے کہ آپ نے مہر رکھی ہے, ایسے جگہ رکھی ہے اور اس نے وہ کھا بھی لی تھوڑی سی تسبیح, اس نے چوسنا شروع کر دی, اس کو پھر آپ ڈانٹیں نہیں, اس سے آپ پیار سے کر کے لے لیں اس سے. تو یہ چیزیں بچے کے ذہن میں آتی جائیں گی. خاص طور پر ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ آپ بچے کو دعا کرنا سکھائیں.
بالکل,
دعا خود بھی نماز کے بعد, قرآن کے بعد, قرآن کی تلاوت کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا ضرور کریں. دعا ضرور کریں تو بچہ یہ تو دیکھے گا نا کہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں. اور پھر بچے سے بھی آپ کہیں دعا مانگو, یہ دعا مانگ لو, شاباش, بہت. تو چھوٹا بچہ ابھی کچھ نہیں مفہوم, لیکن اسے پتہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے کچھ کہنا ہے. جب جیسے جیسے عمر بڑھے گی ویسے ویسے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوں گے کہ یہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, اللہ کہاں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. آپ مجھے وقت بتائیں گی, بتائیے گا کہ ابھی کتنے منٹس ہیں. نہیں, مقصد یہ کہ کتنا ڈیوریشن ہے میرے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وقت ہو رہا ہے تقریباً تمام. تو اس میں یہ کہ آپ یعنی ساری عبادتیں, آپ نماز پڑھیں گی, آپ روزہ رکھیں گی, آپ دعائیں پڑھیں گی, آپ قرآن کی تلاوت کریں گی, سمجھے. اس کے علاوہ آپ ایسی محفلوں میں جائیں گی جہاں مذہبی چیزیں, مذہبی یعنی اس سے اہتمام کیا جاتا ہے اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں, یا مجلس ہوتی ہے یا محفل ہوتی ہے, قصیدے پڑھے جاتے ہیں, اشعار پڑھے جاتے ہیں کس کی شان میں. تو جس چیز کا ان ساری چیزوں میں خیال سب سے زیادہ رکھنا ہے, میں اس حصے میں جو کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ مذہبی معاملات میں کہیں خشکی نہ آنے.
بالکل, یہ بہت اہم ہے, خاص طور سے نئے زمانے کے حساب سے.
کبھی بھی, ہمیشہ ہمارے آئمہ نے یہ چیز کبھی نہیں کی. بچہ اگر نماز کے دوران پیٹھ پہ آپ کے سوار ہو گیا, تو جب آپ جتنا طول دے سکتی ہیں نماز خراب ہونے کے سے بچانے کے لیے, اتنا تو آپ طول دیں.
کوئی تو دیکھ
اس کے بعد, اگر کوئی بھی نہیں دیکھے تو آپ آہستگی سے اٹھنا شروع کریں کہ بچہ پریشان نہ ہو, خود اتر جائے گا, یا یہ کہ کم سے کم گرے گا نہیں. تو اس بات کا آپ پورا خیال رکھیں کہ بچہ جو ہے وہ خشکی نہ آنے پائے. اور اس خشکی کے نقصانات اور دشمنوں نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا وہ میں اگلے حصے میں بتاؤں گی, جو میرا خیال ہے وقت ختم ہو گیا.
جی بہت شکریہ. کل بات اس وقت چل رہی ہے, اس موضوع جو پروگرام کا ہے, بچوں نوجوانوں کو ترغیب دلانا عبادت کی, اس حوالے سے آپ بات کر رہی تھی. تو ہم اس نقطے پہ آئے کہ عبادت کو خشک نہ بنایا جائے. خشکی سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں, خشکی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بچہ ہے, اس نے چیزیں سیکھیں, اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بچہ ہمارا قرآن شروع کر دے. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے اس کو الف با, تو اب آپ کچھ رنگین کارڈز بنا لیں خود, اگر نہیں مل رہے ہیں وہ, کچھ ایسی چیزیں بنائیں کہ جس سے آپ اس کو, یا پوئم کی یعنی نظم کی شکل میں اس کو الف با والی نظمیں سکھائیں. چھوٹا سا بچہ ہے ابھی, وہ دھیرے دھیرے جیسے سیکھ لے گا اے بی سی ڈی, اور اس کے سلسلے کی ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہیں. اس میں شروع کریں, عربی کے لیے بھی, اور عربی میں بھی ہیں ایسی چیزیں, وہاں کرنا آپ نے شروع کیا. لیکن اگر آپ بچہ آپ تھوڑا بڑا ہوا, ٹھیک ہے نا, آپ نے اس کو زبانی رات کو جب آپ بچے کو لے کے لیٹیں, یا دن میں آپ جب وہی, تو آپ اس کو بھی چھوٹے چھوٹے سوروں سے شروع کریں. اس کی ہو سکتا ہے زبان نہیں ٹوٹ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کو آپ اس کے کھیل کی طرح آپ اس کے لیے خود گائیں ایسی چیزوں کو, سوروں کو تھوڑا سا دھن کے ساتھ, تھوڑا سا اس طرح سے پڑھنا شروع کریں. اب جب بچہ اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے, ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سختی جو کی جاتی ہے وہ قرآن پڑھانے میں, یا یہ تم نے کیا اللہ ناراض ہو جائے گا, جہنم میں ڈال دے گا. ارے بھائی, اللہ کو تم نے اتنا برا تعارف کروا دیا اللہ کہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ ہے کیا جو اسے جہنم میں ڈالنے کے چکر میں لگا رہتا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ.
بالکل, میں نے دیکھا.
تو اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ بچے کو کہیں, کوئی شرارت کر رہا ہے, کوئی چیز مان لیجیے ایسے پھول ہے یہاں پر, پھول توڑ رہا ہے وہ, تو اسے کہیں کہ یہ نہیں توڑو, دیکھو یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں نا, اللہ کتنی ساری چیزیں بناتا ہے, سب تمہارے لیے بناتا ہے. تو جب کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اچھی طرح اسے رکھا جاتا ہے, اچھی طرح رکھا. اگر تمہاری کوئی چیز توڑ دے تمہیں برا لگے گا یا نہیں؟
بیان کرنے کا طریقہ,
اللہ کو یعنی یہ کریں کہ اللہ کو ایک دوست کی حیثیت سے اس کے سامنے لائیں. کوئی چیز مانگ رہا ہے بچہ, نہیں ہے, آپ نہیں دے سکتی ہیں کچھ بھی, دیکھو یہ چیز جو ہے یہ تم دعا کرو کہ ہم اس کو تمہارے لیے خرید سکیں, ابھی تمہارے پاس پیسے نہیں, تو دعا کرو تو اللہ پوری کرے گا. تو اب اس کے ذہن میں آپ کے یہ بیچ بیچ کے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں, یہ مت سوچیے کہ آپ نے دن میں ایک بار یا دو بار کہہ دیا دعا کرو تو وہ بچہ جو ہے وہ سمجھ لے گا. نہیں, अब उसके जहन में वो चीज बीज की तरह बैठ जाएगी, जैसे मिट्टी में जब आप बीज डालते हैं तो बैठता है, अभी वो असर नहीं दिखाएगा। हर पौधा, हर बीज उगने में वक्त लेता है। आप घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, उसको कुरान की तरफ जब माइल करें तो आप एक तो ये कि खुद कुरान पढ़ें, कोशिश करें सीखें, यानी आपके अब इस वक्त जो है जो माहौल दुनिया में है, उस वक्त इंटरनेट के जरिए या जहाँ पर है मौलवी मास्टर उनके जरिए, जिसके भी जरिए आप अच्छी धुन में कुरान पढ़ना सीखें, ठीक है। बच्चों को जब आप कुरान पढ़ रहे हो, आपको महसूस हो कोई यहीं पर खेल रहे हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको हक नहीं है कि आप उन्हें भगाएं वहाँ से कि मुझे कुरान पढ़ने दो, इबादत भी नहीं करने देते।
हाँ,
नहीं,
बच्चे
इबादत को फिर बहुत खतरनाक शय समझने लगते हैं कि जिस वक्त अम्मी अब्बा या दादी दादा इबादत कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत खतरनाक मौका है, इनसे दूर हट जाओ। या आपने उनको दूर किया है इबादत से, आपने अल्लाह से उनको दूर किया है। तो इसी के लिए आप महफिलों में, मजलिसों में, जहाँ कहीं जाए उस पर बच्चे को कैदी बना के ना रखें, ठीक है। उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़, आप अपने पर्स में कोई टॉफ़ी रख लें, कोई चीज़ रख लें जो उसको बीच में देती है, सुनो देखो क्या कह रही हैं, सुनो देखो ये क्या कह रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह। अगर आपने देखा बच्चा ज़्यादा बेचैन है, आपका दिल भी चाह रहा है महफिल में बैठे रहने का, आप उसको लेके उठ जाए, ताकि वो अपने ऊपर जबरदस्ती महसूस ना करे
और प्रेशर भी महसूस ना करे।
वही दबाव, जबरदस्ती अपने ऊपर दबाव
मजा ही नहीं आएगा,
महसूस ना होने दें उसको बिल्कुल भी। इसके अलावा एक चीज ये होती है कि आप जब ऐसी महफिलों में बच्चों को लेके जाते हैं तो आप ये समझते हैं कि वो सिर्फ खेल में लगा हुआ है या उसका दिल नहीं लग रहा है, उसने बहुत सी चीजें वहां सीख ली हैं जिसका आपको पता भी नहीं चला, जिसका आपको पता भी नहीं चल पाता, वो चीज़ें उसने वहाँ सीख ली होती। तो जिन चीज, जब रोज़ा है, रोज़ा रखा है, कहाँ रोज़ा, तो बच्चे छोटे होते हैं तो पूछते हैं कहाँ रखा है,
बिल्कुल।
जब नमाज पढ़नी होती है तो वो जब वो करते हैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने, कहाँ है अल्लाह, तो उसमें झड़कने और उसकी बात नहीं, आप बताएं कि अल्लाह कोई ऐसी हस्ती है, आप बच्चों को जो अपने अल्फाज में अपने माहौल के मुताबिक बच्चे को ये समझाएं, जो हमें हर वक्त देखता है, जो हमारी सारी मुश्किलात को जानता है, जो हमारी मुश्किलात दूर करता है। तो जब हम उससे जुड़े रहेंगे, जब हम अल्लाह का कहना मानते रहेंगे, उसको खुश रखेंगे, तो वो हमें खुश रखेगा, वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बच्चे के जहन में पड़ती जाएंगी। जब छोटा है तो नमाज वो आपके ईमानी उसमें पढ़ेगा सिर्फ, हाँ, आपकी नकल, लेकिन जब बच्चा 4-5 साल का हो जाए तो आप अपने में, वालदैन अपने में इतना, यानी कहते हैं बर्दाश्त, सब्र तहम्मुल पैदा करें कि आप बच्चे को अपने साथ नमाज पढ़ाएं, अपने साथ नमाज पढ़ाएं। और अपनी नमाज पढ़ने में तो बच्चा जाहिर है धीरे धीरे सीखेगा, आप अपनी नमाज कम स्पीड में पढ़ें,
सूरत थोड़े को कम बच्चे, कर दें। थोड़े बड़े बच्चे के बारे में बात हो रही है,
अब जब थोड़े बड़े बच्चे जब, हाँ, अभी वो तब, साल जब वो है तो उसके साथ आप आहिस्ता नमाज पढ़ें। उसके बाद नमाज के बाद दुआ जरूर करें, और दुआ काफी देर करें, और जिस वक्त आप दुआ करें तो दुआ जोर से करें, पालने वाले हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें अच्छा इंसान बनने की तौफीक दे, पालने वाले तूने हमें बहुत कुछ दिया है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। यानी ऐसे अल्फाज जो बच्चा समझे, हमारे पड़ोसियों पे रहमतें नाजिल कर, हमारे बुजुर्गों पे रहमतें नाजिल कर, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, तूने हमें बहुत दिया है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तू हमें हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर दे, हमारे बच्चों को सही रास्ते पे लगा दे। ये दुआएं जो हैं, ये होगा क्या कि बच्चा ये दुआएं सीख रहा है और ये सोच रहा है कि कोई ऐसी हस्ती है जिससे हमारी माँ या हमारा बाप जो भी कर रहा है वो उससे बात कर रहा है, तो वो अपने खुद में कुर्बत महसूस करने लगेगा। ये जो हम ज़ियारतों पे जाते हैं, ये जो हम बुज़ुर्गों के वहाँ जाते हैं, कब्रों पर जाते हैं और जाके हम दुआएँ मांगते हैं, ये किस लिए है? ये इसीलिए तो है ना कि उनके हमारे जहन में है कि वो इतने नेक बंदे थे, हम बड़ों की बात कर रहे हैं, वो इतने नेक बंदे थे कि खुदा ने उनसे कह दिया है कि तुम इनकी जो तुमसे सिफारिश करने को कहे, जो तुम्हारे पास दुआ मांगने आए, तुम उसकी सिफारिश करो, मैं वो दुआ पूरी करूँगा, चाहे वो तुम्हारे नाम पे ख़त्म हो। जब तक कम यानी कम अक्ल है तो ये समझ रहा है कि भाई उसने पूरी कर दी। जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, जैसे आइम्मा, जैसे पैगम्बर अलैहिस्सलाम, सारे आइम्मा और मासूमीन और हमारे पैगम्बर हजरात, जो इनका है, इनका तो दर्जा ही और है दुआ के सिलसिले में, वो मैं अभी बयान करूंगी जब आप मुझे वक्त देंगे।
जी बिल्कुल।
अच्छा, एक सवाल पूछा गया था, कनीज जहरा ने पूछा था कि उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी हमें नमाज रोजे में बहुत अजीब लज्जत का एहसास होता है पर अक्सर औकात ऐसा कुछ महसूस नहीं होता।
हाँ, बहुत लोगों के साथ, बल्कि अक्सर लोगों के साथ है, और अक्सर औकात ही होता है, और उसकी वजह हमारी अपनी ज़हनी कैफियत होती है। ज़हनी कैफियत से मुराद ये कि अगर नमाज को अव्वल वक्त पढ़ने पे बहुत ज़ोर दिया जाता है, जैसे ही नमाज का वक्त हो उस वक्त आपके पास एनर्जी होती है,
सही।
तो उस वक्त जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो जब आप वज़ू करते हैं उसमें भी क़ुर्बतन लिल्लाह कहते हैं, तो खुदा खुद मदद करता है कि आपकी क़ुर्बत हो और आप खुद ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आमादा हैं इस वक्त नमाज के लिए। तो जब ऐसे में आप नमाज पढ़ेंगे तो मतलब ज़्यादा चांस इस बात का है कि आपका नमाज में दिल लगेगा, और आप ज़हनी तौर पर, चूंकि अभी अभी आपने अज़ान सुनी है,
हाँ।
तो आपका जहन उस तरफ पूरी तरह मायल है, आप थकी हुई नहीं है। तो जब इबादतों के लिए कहा जाता है, आप इबादत कोई भी नमाज हो या क्या कहते हैं दुआएं वगैरह पढ़ना हो, सब में आप अपनी जहनी और जिस्मानी हालत का ख्याल रखें। नमाज अव्वल वक्त इसीलिए पढ़ें कि आपका जहन पूरी तरह खुदा की तरफ मुतवज्जे रहे, अज़ान ने आपको इस काम के लिए में मदद दी हुई है और आपको थकन नहीं है। अगर आपने देर की तो आपके दूसरे कामों में जहन रहेगा, तो जहन इस तरह से तैयार नहीं होगा, और जिस्म भी कि आप अब तक काफ़ी काम कर चुकी होंगी, जल्दी जल्दी जब आप नमाज पढ़ लेंगी तो, या उस वक्त ये होगा उफ़ो अब तो ना रुकू किया जा रहा है, ना सजदा किया जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, इस जज्बे के साथ जब आप जाएंगी तो नमाज में कतन लुत्फ़ नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नमाज के लिए ये ज़्यादा सवाब है कि जब अज़ान से थोड़ा पहले आप उसके लिए तैयार हो जाएं और आप उस इंतज़ार में बैठें, यानी 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, ज़्यादा नहीं क्योंकि आप 2 घंटे बैठ गए फिर बाकी काम कब होंगे, लेकिन ये कि नमाज के लिए मतलब आप कोशिश ये करें, मतलब ये, और दूसरे साथ जज्बा ये रखें कि हम उससे बात करने जा रहे हैं जो हमारी बातों को गौर से सुनता है, हम उसके पास जा रहे हैं जो हमारी मुश्किलात को हमसे बेहतर जानता है, हमारी मुश्किलात को भी और उसके हल को भी हमसे बेहतर जानता है। तो हम एक ऐसे दोस्त के पास, एक ऐसे रफ़ीक के पास जा रहे हैं कि जो हमारे लिए मददगार है, जो हमारे लिए हमारे लिए दोस्त है, हमसे शदीद मोहब्बत करता है। तो इस जज्बे को अपने जहन में अगर परवरिश दें और उसके बाद जाएँ आप नमाज के लिए, और अपने आप को तैयार रखें इसके लिए, और इसीलिए जिक्र किया जाता है, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आप जिक्र करें उसको सोच के जिक्र करें कि आप ये किसके लिए कर रही हैं, तो यकीनन हर नमाज में
बिल्कुल होता है ऐसा। अजान के फौरन बाद ही जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो जहन में ये बात भी होती है कि इस टाइम तकरीबन सभी लोग इस शहर के जो है जिनका यही शरी उफुक बनता है वो भी खड़े होंगे नमाज पढ़ने, एक जज्बा होता है खास। जब देर हो जाए तो जैसे ठंडा सा हो जाता है। बहुत जोर दिया आपने कि बचपने ही से बच्चों को दुआ का सिखाना और ये सब, तो क्या असरात हैं इस दुआ के?
देखिए, एक तो ये कि जब आप दुआ करेंगी तो बच्चे में ये एहसास होगा कि कोई हस्ती है जो सुन रही है हमारी बात, जिस तक हम अपनी बात पहुँचा रहे हैं, तो उस हस्ती से उसका उन्स बढ़ेगा। जब उस हस्ती से उसका उन्स पड़ेगा, फिर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ महफिलों में, मजलिसों में, जहाँ पे भी आप जाते हैं तो आप अपनी मज़ा आता है, बच्चे को ले जाते हैं, बच्चा देखता है, नई चीज़ें सीखता है, खुश होता है। अगर महफिल है यानी उस तरह की कसीदा खानी या इस टाइप की, तो उसको लुत्फ आता है, वहाँ कभी छोटे मोटे इनाम बाज जगह होते हैं, वो चीज़ें बच्चे को बहुत मुतासर भी करती हैं। तो उसे आम दिनों का और ख़ास दिनों का फ़र्क समझ में आता है, उसको वो ये सुनता है कि इसका बहुत सवाब है। सवाब का मतलब खुदा जो है वो बहुत खुश हुआ है और वो इसका अज्र देगा, उसको इसका इनाम देगा, उसको धीरे धीरे उसको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी उसकी नौजवानी तक। नौजवानी का मतलब 18 साल नहीं, बल्कि नौजवानी का मतलब 10-12 साल, 7 साल 8 साल, ये उम्र को कहते हैं असल में। तो जब उसको ये चीज़ समझ में आने लगेगी तो खुदा से क़ुर्ब महसूस करेगा, समझ रहे हैं? और यानी दुआ जो है इसमें बहुत ज़्यादा मददगार होती है। जब आप ले जाते हैं तो खुदा से क़ुर्ब महसूस करता है, खुदा है कोई बहुत अच्छा है, जहाँ हम जाते हैं तो हमें चीज़ें मिलती हैं, मिठाई मिलती है, हमें लोग तारीफ़ करते हैं, फ़लाँ चीज़ पढ़ते हैं तो लोग तारीफ़ कर, तो ये उसका खुदा से अनजाने में ही वो क़ुर्बत हासिल कर रहा है, एक काम। और दूसरी चीज़, जब वो और मतलब मसला जब आगे और ज़्यादा बढ़ता है तो खुदा से क़ुर्बत के लिए जब दुआ वाली बात भी उसने देखी कि कोई खुदा न खास्ता बीमार हो गया वालदैन में से, या कोई भी, दुआ करो दुआ करो, तो कोई सुन रहा है, हम किसी से कह रहे हैं वो ठीक हो गया, वो अच्छा हो गया, जो भी, मतलब ये सारी चीज़ें मुस्बत असर डालती हैं, तो बच्चा खुदा से करीब होता है और उसकी एनर्जी बढ़ती है। इस सिलसिले में बस मैं एक चीज़ जो बहुत अहम बताना चाहती हूँ वो ये कि यहाँ पर डॉक्टर समी, एक ईरानी सर्जन है दिमाग के, और अमेरिका में वो ज़्यादातर 6 महीने मेरा ख्याल
जी
अमेरिका में
जी
और 6 महीने ईरान में रहते हैं, इस तरह से इन्हें
जी जी
इंटरनेशनल
जी
सतह की चीज़ है वो।
बिल्कुल
तो उन्होंने वहाँ पर एक अस्पताल है जो दिमाग की शक्ल का है, और वो तेहरान में भी एक अस्पताल वो बना रहे हैं जो दिमाग की ही शक्ल का है।
सही।
उनका मैंने भी एक हाल ही में बयान देखा, उसमें उन्होंने कहा कि यानी आप दुआ का जितना असर दिमाग की सेहत पर पड़ता है,
अच्छा
दिमाग पर जितना मुसबत असर दुआ का पड़ता है उतना किसी और चीज का नहीं।
वाह,
उतना किसी भी और चीज
की होगी ना, कई लोगों
जाहिर
को
है, ये तो बहुत बड़े
को...
डॉक्टर हैं सब, यानी मेरा ख्याल है 80 साल से ऊपर के हैं।
हाँ जी,
वो
जी।
क्या कहते हैं, और बहुत तजुर्बा, बिल्कुल सेहतमंद है वो, माशाल्लाह। देखा होगा आपने यहाँ पे टेलीविजन वगैरह पे भी वो आते आए आ चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जितना असर, हम लोग कहते हैं ना मुस्बत सोच हो इंसान की,
बिल्कुल
मुख्तलिफ यूरोपी मुल्कों में इलाज हो रहा है,
ये फर्क है ना,
इलाज मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात का,
अब यानी रिवायत अहदीस की रोशनी में ही अपने सारी उसको देखते हैं।
नहीं, ये साइंस के उसमें देख रहे हैं,
अच्छा।
ये साइंस के उसमें देख रहे हैं, यानी
अच्छा।
आईने में इन चीजों को देख रहे हैं, ये उससे नहीं बताया इन्होंने।
इसका कोई मजहब से ताल्लुक
मजहब से ताल्लुक नहीं है, कोई भी उनके लेवल का अच्छा। डॉक्टर होगा तो यही कहेगा।
अच्छा।
तो उन्होंने जो चीजें देखी, जैसे कहा जाता है कि यानी यूरोप वगैरह में बीमारों से कहा जाता है कि तुम ये सोचो और बल्कि ये दोहराओ कि हम अच्छे हो रहे हैं, हम अच्छे हो रहे हैं। बहुत सारे यानी अस्पतालों में अमेरिका के और यूरोप के मरीजों से बार बार इसको रिपीट करते रहो, इसे कहते रहो कि हम अच्छे हो रहे हैं, हम अच्छे हो रहे हैं। ये क्या है, वो कहते हैं इससे मुस्बत चीज आपके जहन में पहुंच रही है। और डॉक्टर समी का कहना है कि जितना मुस्बत असर दुआ का पड़ता है इंसान के दिमाग पर, उससे बेहतर टॉनिक दिमाग के लिए कोई नहीं है, उससे बेहतर चीज़ दिमाग के लिए कुछ नहीं है। तो जब ये बच्चा इस फिक्र के साथ दुआ करेगा कि कोई है जो हम पर ध्यान दे रहा है, कोई है जो हमारी बात सुन रहा है, और उस वक्त वो करीब आएगा, तो फिर वालदैन को कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चे से ये कहने की कि जाओ नमाज पढ़ो, जब रोज़ा रखना ज़रूरी है, तब ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा खुद ब खुद इबादत की तरफ मायल होगा, वही इबादत जो खुदा को दोस्त समझ के, खुदा को अपना समझ के, खुदा को सबसे ज़्यादा नज़दीक समझ के इबादत जो करेगा उसका सवाब वालदैन को।
मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, वाकई दुआ मोमिन के लिए हथियार का दर्जा रखती है। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे ख्याल से मेहमान के साथ ये हमारा आखिरी
पार्ट था, तकरीबन खत्म हो रहा है।